नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरये मदालसा अपने पुत्र अलर्क को राजनीति धर्मनीति सदाचार लौकिक व्यवहार श्राद्ध आदि सभी के विषय में समझा रही है। अब कौन सी वस्तु खानी चाहिए ग्रहण करनी चाहिए कौन सी त्याग करने योग्य होती है पदार्थों की शुद्धि कैसे होती है इन सब कर्तव्य अकर्तव्यों सहित आगे बात करते हैं। मदालसा कहती है बेटा अब त्याज्य और ग्राह्य वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूं सुनो। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वो भोजन करने योग्य है। अठर मैं हार गयो कबीर जी जीत गया। कई बार मना करो छोड़ो ही नहीं कहेंगे भाई मैं कहीं भाई थे जीत गया मैं। गेहूं जो तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्राह्य है। शंख पत्थर सोना चांदी रस्सी कपड़ा साग फूल मूल फल बिदल माने बांस से बने टकोरे टोकरे मणि हीरा मूंगा मोती तथा मनुष्य के शरीर की शुद्धि जल से ही होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है तब वो शुद्ध होता है। सूप धान्य राशि मृग चर्म मूसल ऊखड़ी तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वलकल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। तृण काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से होती है। भेड़ के ऊन से बने हुए कपड़े और केश आदि दोष युक्त हो गए हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खड़ी और जल से होती है। इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और क्षार से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। एक जगह मिट्टी के बर्तनों में संत लोग भोजन करते हैं नाम नहीं बताएंगे वहां वो फिर वो संत चले जाते हैं तो उनको आग में डाल देते हैं फिर वापिस लेगा फिर शुद्ध हो गया। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध हो जाते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न कारीगर का हाथ बाजार में बिकने के लिए आई हुई साग सब्जी आदि वस्तुएं स्त्रियों का मुख गली से आई हुई वस्तु जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा है छोटा बच्चा है ऐसी जो स्त्री है वो स्त्री स्वाभाविक ही शुद्ध माननी चाहिए। बच्चा है दूध पी लेती है दूध पीने से शरीर ऊंटा होता है वो स्त्री स्वाभाविक शुद्ध है। समयानुसार अग्नि से तपाने बुहारने गायों के चलने फिरने लीपने जोतने और सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। गुहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हो, उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मलकर जल द्वारा धोने से ही होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और सीसा राख से और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो, उसे मिट्टी और जल से तब तक धोए जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पड़ा हुआ जल, जिसमें एक गाय की प्यास बुझ सके इतना जल होता है, वो शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध हो जाता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि, ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। गाय चाहे किसी भी जाति के आदमी की हो, शुद्ध मानी जाती है। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का मुख शुद्ध नहीं माना है। बछड़े का मुख और माता का स्तन भी पवित्र माना गया है। फल गिराने में पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी जाती है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के तृण, ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध हो जाती है। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आदि आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से जिसका स्पर्श हो गया हो, उनकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट से बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग से शुद्धि होती है। अनजान में यदि दूषित अन्न खा लिया जाए तो 3 रात उपवास करें, और जानबूझकर खाया हो तो उसकी दोष की निवृत्ति के लिए कोई शांति का प्रायश्चित, दोष शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से ही शुद्धि होती है, और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करने से, आचमन करके गाय का स्पर्श करने से या सूर्य के दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मनुष्य किसी का खून पड़ा हो तो उसको लांघे नहीं, और गंदगी पड़ी हो तो लांघे नहीं, कहीं उपटन पड़ा हुआ हो तो लांघे नहीं। ऐसे समय में उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे, बाग बगीचों में बिना समय जूठन, मलमूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंकना चाहिए। दूसरे के खुदाए हुए पोखर आदि के जल में 5 लौंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान नहीं करना चाहिए। देवता संबंधी सरोवरों तथा गंगा आदि नदियों में सदा स्नान करना चाहिए। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने का मौका मिल जाए तो सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है, नहीं तो शुद्धि नहीं होती। रजस्वला स्त्री, अंत्यज, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल और मुर्दा ढोने वाले तथा परस्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ, नव प्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाला, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सुवर, तथा अशौच दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से ही शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों ने भी त्याग दिया हो वह नराधम महापापी होता है। नित्य कर्म का कभी भी त्याग न करे। उसे न करने का बंधन तो केवल जन्ना शौच और मरना शौच में ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिनों तक दान होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदनंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। जो मनुष्य मर गया हो उस मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले 4, 7, और 9 दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा 4th दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु सपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ों वाले जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है। तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशौच रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूरा कर सकते हैं। जन्ना शौच में भी यही विधि है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के साथ दूसरे का भी अशौच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म में वे बालक के दिन पर ही दूसरे की शुद्धि बताई गई है। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्ति को दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो जाते हैं। इसलिए वे अपने अपने वर्ण धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि इस लोक और परलोक में भी यह कल्याण देने वाला है अपने अपने वर्ण धर्म का अनुष्ठान करना। 3 वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करें। मनुष्य को विद्वान होना चाहिए। धर्मानुसार धन का उपार्जन करें, उसे यत्न पूर्वक यज्ञ आदि पुण्य कर्म में लगाए। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो तथा जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो ऐसा कर्म निशंक कर सकते हैं। बेटा, ऐसे आचरण करने वाली गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है। उसका इस लोक और परलोक में कल्याण होता है। माता के इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वो पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था। तदनंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और अपने पुत्र अलक का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे ये अंतिम वचन कहा, बेटा गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रु की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई असह्य दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है उसे तुम पढ़ लेना, क्योंकि ममता से बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। इसलिए तुम्हारे पर कोई आफत आई हुई हो तो उसको तुम इस कागज में वो निकाल करके पढ़ लेना। यूं कहकर के मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज कुवलयाश्व अर्थात ऋतध्वज और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र के भांति प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा करते। राजा अलर्क ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया। इन सब कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। महाराज को अनेक पुत्र हुए जो महान बलवान अत्यंत पराक्रमी धर्मात्मा महात्मा तथा कुमार्ग के सदा विरोधी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया और धन से धर्म का अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार धर्म और अर्थ और काम में आसक्त हो पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें तो एक दिन के समान जान पड़ा। मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया, उनकी ओर से उसको कभी तृप्ति नहीं हुई, अतृप्ति बनी रही, और प्राप्त करें। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार सुनकर के उनका बड़ा भाई सुबाहु था जो वन में रहता था, उसने ये सुना कि ये मेरा छोटा भाई तो विषयों में बुरी तरह से फंस गया है, मेरा छोटा भाई भी किसी तरह ज्ञान को प्राप्त हो। इस अभिलाषा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया क्या करना चाहिए। अंत में उन्हें एक तरकीब का ज्ञान हुआ। उसने देखा कि राजा अलर्क का शत्रु कौन है, मालूम कर लिया। अब अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया। ऐसा निश्चय करके वे अपने राज्य प्राप्ति का उद्देश्य लेकर असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशीराज की शरण में आए। सुबाहु काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली और दूत भेजकर कहा कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य देओ, तुम राज्य पर व्यर्थ में बैठे हो, तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे माता पिता ने ममता पूर्वक तुमको राज्य दिया है पर राज सिंहासन पर तो बड़े बेटे का अधिकार होता है, तुम या तो राज्य दे दो नहीं तो तुम हमारे साथ युद्ध करो। अलर्क के राजधर्म के अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने शत्रु के इस प्रकार आज्ञापूर्वक संदेश सुनकर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज को उत्तर दिया, मेरे बड़े भाई, मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य मांग ले, मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। मुझे डराना चाहते हो? वो काशीराज के पास चला गया, मेरे पास नहीं आया। मेरे पास आते मैं बड़े भाई के चरणों में प्रणाम कर उसको सिंहासन पर बैठा कर चला जाता, पर वो काशीराज के पास गए, नहीं देता। जा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, याचना करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय का धर्म तो पराक्रम दिखाना है, क्योंकि क्षत्रिय पराक्रम का धनी है। उस पराक्रम को दिखाने का दो ही तो नतीजा होगा, परिणाम होगा, या तो हमको राज्य मिल जाएगा या हम मर जाएंगे, पर दोनों में हमारे धर्म का पालन होगा, याचना नहीं करेंगे। तब काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के समीपवर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर चारों तरफ घेरा डाल दिया और सामंत राजाओं को सताना प्रारंभ किया। दुर्ग और दुर्ग के रक्षकों को काबू में कर लिया, किसी को धन देकर, कहीं फूट डालकर, कहीं थोड़ा समझा बुझाकर, कहीं और कुछ करके उसने सबको अपने वश में कर लिया। इस प्रकार शत्रु मंडली से पीड़ित राजा अलर्क के पास अब थोड़ी सी सेना रह गई, खजाना भी घटने लगा और शत्रु ने उनके नगर पर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोष के क्षीण होने से राजा को बड़ा खेद हुआ, चित्त में व्याकुलता हो गई। जब अत्यंत वेदना से व्यथा होने लगी, वे दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हुआ जिसे ऐसी अवसरों पर उपयोग करने के लिए माता मदालसा ने दिया था। स्नान करके पवित्र होकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया और अंगूठी से वह उपदेश पत्र निकालकर देखा, उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुए माता के उपदेश को बड़े ध्यान से पढ़ा, जिससे उसके समस्त शरीर में रोमांच हो गया और आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। वो उपदेश इस प्रकार का था, संगह सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते, स सद्भिः स कर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम्। संसार का संग सर्वथा त्याग के योग्य है। यदि उसका तुम त्याग नहीं कर सकते हो तो वो संग सत्पुरुषों के साथ करो, क्योंकि सत्पुरुषों का संग है ये संसार में भवरोग को दूर करने की सबसे बड़ी औषधि है। काम है सर्वात्मना हेय, काम है सर्वात्मना हेयो, हातुम ने छक्यते न स, मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम्। मनुष्य को कोई कामना नहीं करनी चाहिए। यदि कहो कि कामना का त्याग हम कर नहीं सकते हैं तो अपने मुक्ति के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग में ये तो मुक्ति की जो इच्छा है यही सबसे बड़ा औषध है। इससे कामना मिटती है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, ओहो, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत होने पर ही ना और मुक्ति की इच्छा जागृत कैसे होगी कि वो सत्संग से होगी। ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत आर्त भाव से आसक्ति रहित पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी के शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, हे ब्रह्मन, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूं, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, वाह राजन, अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूं, पर एक बात है, सच सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ है और तुम आज ही मेरे पास कैसे आए। अलर्क ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हो तो यह शरीर तो पांच भूतों का समुदाय मात्र है, गुण की गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा इसमें क्या है। शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से अलग है। ये हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क ही नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी घोड़े रथ कोष आदि से तो संबंध हो ही कैसे सकता है। इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे कोई दुख है, न मुझे किसी प्रकार का सुख है, न नगर तथा कोष से मेरा कोई संबंध है। यह हाथी घोड़े आदि की सेना न स्वभाव की है, न दूसरे की है, न मेरी है। जैसे कलसी घट और कमंडलों में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेकता दिखती है, उसी प्रकार मैं सुबाहु, काशीराज, सेना के लोग, ये सब भिन्न भिन्न शरीरों में तो रहते हैं परंतु आत्मा की दृष्टि से सब एक हैं। शरीर के भेद से ही इनका अलग अलग भेद ज्ञान होता है। पुरुष की बुद्धि जिस इस वस्तु में आसक्त होती है वो वहीं से दुख पैदा करता है। हे प्रभु, मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अतः न दुखी हूँ न सुखी हूँ। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य यह है कि भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्ति है और वही सुख दुख का अनुभव करता है। जो भोगों में आसक्त होता है वही सुख दुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी बात है, तुमने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। इस शरीर में वस्तु आदि में ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममता की प्रतीति को सेमर के रुई के भांति उड़ा दिया, कैसा तुमको ज्ञान हुआ। अभी तो मेरे से तुमने कुछ सुना ही नहीं, तुम तो मेरे पास दुखी होकर रोने लगे और मैंने दुख का कारण पूछा तो तुमने ज्ञान की बात कह दी। इसलिए ध्यान रखो, मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी एक महान वृक्ष खड़ा हुआ है और वह अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न होता है। ममता ही इसका तना है, गृह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं, स्त्री और पुत्र आदि उसके पल्लव हैं, पल्लव माने पत्ते, धन धान्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं। वह अनादि काल से बढ़ता चला आ रहा है, पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प है, सुख और दुख महान फल है, वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा है। ये संसार रूपी वृक्ष, अहंकार रूपी, अज्ञान रूपी महान वृक्ष है, मोक्ष के आड़े खड़ा है। अज्ञानों का संग उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। ये जो सकाम करने की प्रबल इच्छा होती है वह उस वृक्ष पर भौरों के भांति मंडराती रहती है। कामना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक कर इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वे भ्रमपूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर ज्ञान उनको है नहीं। संसार को नहीं समझा, इस वृक्ष को नहीं समझा, काय का ज्ञान। ऐसे लोगों को मोक्ष कैसे मिल सकता है? परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट देते हैं, वे पुरुष उस मोक्ष मार्ग से चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। और धूल काटों से रहित शीतल ब्रह्म वन में पहुंचकर सब प्रकार की वृत्तियों से रहित हो परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। अलर्ट ने कहा, हे भगवान, क्या आपकी कृपा की वर्षा हुई है? आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक कराने वाला है, किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः इस ज्ञान को मैं स्थिर नहीं कर पाता हूँ। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के संबंध से कैसे छूट सकूं। मैं इसमें फंसा हुआ हूँ इतना ही जानता हूँ, छूटने का उपाय नहीं जानता हूँ। कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म न हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हो जाऊं, और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता कर मैं महान आनंद में डूब जाऊं। मुझे ऐसा उत्तम योग बताइए, मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूं। आप जैसे संतों का संग मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय बोले, राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है, बस इसी का नाम मुक्ति है। और वही ब्रह्म के साथ एकता और प्राकृत गुणों से अलगाव होना, यही मुक्ति है। मुक्ति होती है योग से, योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से, और सम्यक ज्ञान होता है वैराग्य जनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल कारण समझकर यत्न पूर्वक उसका त्याग दे। आसक्ति न होने पर यह मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का साधन है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान, ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। जहाँ रहना हो वही घर है, जिससे जीवन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान है। इसके सिवा सब अज्ञान है। हे अलर्क, पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से, तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय होने से, मनुष्य फिर देह बंधन में नहीं पड़ता है। राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गई हैं। अब थोड़ा तुम योग का वर्णन सुनो, जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी अलग नहीं होता। योगियों को पहले आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बड़ा कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा यत्न करो। इसके लिए उपाय बताता हूँ, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का, और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करो। जैसे पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं। इसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम ही साधना करनी चाहिए। प्राण और अपान को रोकने का नाम ही प्राण आयाम प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरी के भेद से तीन प्रकार का होता है। अलर्क, अब मैं इसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है, इससे दूनी मात्रा का मध्यम होता है और त्रिगुणी मात्रा का उत्तरी अथवा उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वह प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा जाता है। वही ऐसी ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा स्वेद मन पसीने को और मध्यम के द्वारा कंपन को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीते। यूं करें, मात्रा होती एक पलक में और श्वास को रोके। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मतवाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छानुसार चलाते हैं, इसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपने इच्छा के अधीन रखते हैं। देखो, जब प्राण वश में होते हैं तो प्राणों के साथ मन भी वश में होता है और इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। एक प्राण को वश में करना ये प्राणायाम का काम होता है, बाकी सब अपने वश में हो जाते हैं। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं मारता, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों को ही नष्ट करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में लगे रहना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश है, बहुत सुंदर। वही नींद आलस्य मत लेना, भाई बहुत अच्छा। कदगद मौको मिले राजन, ध्वस्ति प्राप्ति संबित और प्रसाद, ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की चार अवस्थाएं हैं। इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्ति है। ध्वस्ति, ध्वस्ति माने ध्वंस होना, वासनाओं का ध्वंस होना। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोककर सदा उसमें संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है, उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। और जिस प्राणायाम से मन, पांच प्राणवायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद से प्राप्त, इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, उसको प्रसाद अवस्था बोलते हैं। चार अवस्था है। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनों से बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करना चाहिए। शरीर को समभाव से रखे, आसन भी सम हो, दोनों पैरों को समेटकर, दोनों जांघों को आगे की ओर स्थिर करके मुंह को बंद किए रहे, एड़ियों को इस प्रकार रखे जिससे अधोद्वार का स्पर्श न हो, मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहे, मस्तिष्क को कुछ ऊंचा किए रखे, दांतों का दांतों से स्पर्श न होने दें, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखे, रजोगुण से तमोगुण की और सत्वगुण से रजोगुण की वृत्तियों को भली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थित होना, ये योग वेत्ता का सबसे बड़ा काम है। इंद्रिय प्राण आदि और मन को वश में, मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करें। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राणवायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करते हैं। प्राणायाम 12 है, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में 2 धारणा बताई हैं। उनके अनुसार योग में प्रवृत्त हुए नियतात्मा योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा स्वस्थ भी हो जाते हैं। वह परब्रह्म परमात्मा को और प्राकृत गुणों को पृथक पृथक देखता है, व्योम से लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरे पर पैर चढ़ाए, जैसे महल में जाते समय एक सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी पर चढ़ता है। जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है, उसमें जाने में वह दोष रोग दुख तथा मोह को बढ़ाने वाली होती है, उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। प्राणवायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम रखने वाले योगी पुरुष शब्दादि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहृत निवृत्त करते हैं, इसलिए ये प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय बताया है कि इससे रोग आदि की निवृत्ति होती है। जैसे जलार्थी मनुष्य यंत्र और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीतकर धीरे धीरे वायु का पान करते हैं। पहले नाभि में, फिर हृदय में, तदनंतर वक्षस्थल में, उसके बाद कंठ, मुख, नासिका, अग्रभाग, नेत्र, भौं के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राणवायु को धारण करते हैं। ये सबसे उत्तम धारणा मानी जाती है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुल चित्त नहीं होना चाहिए। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की बड़ी प्रबलता हो अथवा बड़े जोर की आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहल पूर्ण स्थान में, आग और पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, स्मशान भूमि में, जहाँ सर्पों का निवास हो, वहाँ उस जगह पर, भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मंदिर में तथा दीमक की मिट्टी के ढेर पर, इन सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास न करे। जहाँ सात्विक भाव की सिद्धि न हो, ऐसे देश काल का त्याग करना चाहिए। योग में असत वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध है, अतः उसको भी छोड़ देना चाहिए। जो मूर्खतावश उस स्थान को, स्थान की परवाह न करके वही योगाभ्यास करता है, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, गूंगापन, अंधापन, बार बार बुखार आदि दोष तत्काल प्रकट होते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने दोष प्रकट हो और उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता हो, तो वह सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, उदावर तथा और कोई उदर संबंधी रोग हो, तो उसके शांति के लिए घी मिलाई हुई जौ को गरम गरम लपसी खा ले तथा केवल उसकी धारणा करे। वह रुकी हुई वायु को निकालती है और वायु घोड़ा को दूर आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समक्ष जो विघ्न आते हैं वो बताता हूं। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उत्तम से उत्तम फल स्त्री विद्या माया सोना चांदी आदि धन सोने आदि के अतिरिक्त वैभव स्वर्ग लोक देवता का शरीर या इंद्रपद या रसायन संग्रह उसे बनाने की क्रिया हवा में उड़ने की शक्ति यज्ञ काल और अग्नि में प्रवेश करना श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल तथा नियम व्रत इष्ट पूर्त और देवता पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा करता है। मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए, ये बाधा आती है। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटाए और बार बार परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे। ऐसा करने पर ये विघ्न अपने आप छूट जाएंगे। इन विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर दूसरे सात्विक राजस तामस ये विघ्न भी आते हैं। प्रातिभ श्रावण दैव भर्म आवर्त ये पांच उपसर्ग योगियों के विघ्न में खड़े हो जाते हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। संपूर्ण वेदों के अर्थ काव्य और शास्त्र के अर्थ संपूर्ण विद्याएं शिल्प कला आदि अपने आप योगी के समझ में आ जाए तो प्रतिभा से संबद्ध होने के कारण ये प्रातिभ उपसर्ग उपसर्ग कहते हैं बाधा और दूर के शब्दों को सुनने की अभिलाषा होती है हजारों योजन दूर तब उसे श्रावण बाधा कहते हैं और आठों दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा होती है वो दैव उपसर्ग होता है। देवी और जब योगी का मन दोषों के कारण सब प्रकार के आचरणों से भ्रष्ट होकर निराधार भटकने लगता है तब भ्रम होता है। जल से उड़ती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब ओर से व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है तब आवर्त नाम का उपसर्ग होता है। ये अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। देखो गीता जी के अनुसार चले तो कोई बाधा है ही नहीं। अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व और कामावसायित्व ये आठ प्रकार की सिद्धियां होती है। इन सिद्धियों को भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा माननी चाहिए। मुक्त होने से उसका कभी जन्म नहीं होता है, वह वृद्धि और नाश को प्राप्त नहीं होता है, न उसका क्षय होता है न परिणाम होता है। पृथ्वी आदि भूत समुदाय से न तो वह काटा जाता है न भीग कर गलता है न जलता है न सूखता है, ऐसे अपने स्वरूप में वो आनंदित रहता है। उसके लिए शब्दादि विषय तो है ही नहीं, न उनका भोगता है और न उनका उसके साथ संयोग होता है। जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से मिला और खंड खंड हुआ सुवर्ण जब आग में तपाया जाता है तो उसका सब दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने अपने टुकड़ों में मिलकर एक हो जाता है, इसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्नि से तपता है तब अंतःकरण के समस्त दोष जल जाने के कारण वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। देखो सोने का एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, चार पांच टुकड़े ले लिए और आग में डाल दिए तो आग के अंदर सोना तो जलता नहीं है, तो वो सब सोना जो टुकड़ों में बटा हुआ था ना वो तो एक हो जाता है और सब उसके साथ मिले हुए दूसरे कचरा सब जल जाता है। पत्थर भी लगा हुआ हो और भी कोई धातु लगी हो सब खत्म हो जाती है। सोना अपने आप ही एक से एक हो जाएगा वो आग के अंदर, एक ही आग में डाल दिया सब एक में हो जाएंगे। ऐसे ही योग के द्वारा पाप तो नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है। जैसे आग में डाली हुई आग उसमें मिलकर एक होती है, उसका वही नाम वही स्वरूप हो जाता है, फिर उसको विशेष रूप से पृथक नहीं कहा जा सकता। उसी तरह जिसके पाप नष्ट हो गए वो योगी परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनसे पृथक नहीं होता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योगी का आत्मा परमात्मा में मिलकर तदाकार हो जाता है। अब मैं योगी का आचार व्यवहार वो सुनना चाहता हूं, वह किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करे कि उसको कभी क्लेश की प्राप्ति न हो। बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान प्राप्त किया अलर्क ने। तब उसके बाद अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्रह्मन् देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया था, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। काशीराज का महान बल वैभव पराक्रम मेरे विनाश करने के लिए यहां प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने आनंद की बात है, इतने दिन तक मैं भोगों में अज्ञान में पड़ा हुआ था, सौभाग्य से मेरा सैनिक बल तो घट ही गया, सैनिक बल के साथ साथ और भी मेरे सेवक वगैरह भी मर गए, खजाना भी खाली हो गया, और बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि मेरे मन में बड़ा दुख पैदा हुआ और उस दुख के कारण से मैं आपकी शरण में आया, और फिर आपने मुझे कितना सुंदर उपदेश दिया, ये सारा उपदेश मेरे चित्त में ज्यों का त्यों बैठ गया है। हे ब्रह्मन्, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की है। जब पुरुष के अच्छे दिन आते हैं तब वह अनर्थ भी अर्थ का कारण बन जाता है। जैसे इस समय मेरे लिए पहले तो बड़े अनर्थ के दिन लगते थे, परंतु आप जैसे महापुरुष के साथ समागम होने से ये तो उपकार करने वाली बात सिद्ध हो गई है। हे भगवान, भाई सुबाहु और काशीराज, इन दोनों का मैं बहुत उपकारी हूं, जिनके कारण मैं विषयों से छूटकर आपके चरणों में आया हूं। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप सब जल करके भस्म हो गए हैं। अब आपने जैसा मुझे आदेश दिया है मैं वैसा ही यत्न करूंगा और फिर इस दुख का भागी न बनूं, ऐसा प्रयास करूंगा। आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूंगा जो विपत्ति रूपी वृक्षों का महान वन है। दत्तात्रेय ने कहा, बेटा जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने जैसे तुम्हें बताया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित होकर मोक्ष के लिए विचरण करते रहो। दत्तात्रेय जी के यूं कहने पर राजा अलरक ने प्रणाम किया और बड़े उतावली के साथ वे उस स्थान पर गए जहां उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज उपस्थित थे। महाबाहु वीरवर काशीराज के पास पहुंचकर अलरक ने सुबाहु के सामने हंसते हुए कहा, हे राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब आप इस बढ़े हुए राज्य को खूब आनंद के साथ भोगो, अथवा यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरे भाई सुबाहु को दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, एक वीर योद्धा बिना युद्ध किए ऐसे ही राज्य को छोड़ दे रहा है, क्या बात है? ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। या युद्ध करो पराजित हो, या अपने प्राणों को त्याग दो। युद्ध के बिना हम राज्य कैसे लेंगे? ये ब्राह्मण का काम दान लेना। तुम क्षत्रिय धर्म के जानकार होकर इतनी बड़ी गलती करते हो। जब मंत्री वर्ग पराजित हो जाए, तब राजा स्वयं मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीतकर इच्छा अनुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे। राजन, मरने के बाद तुम्हारे लिए स्वर्ग तैयार है, और यदि तुम हमें परास्त करोगे तो तुम्हारे लिए विजय तैयार है। परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान को भी करते रहोगे विजयी हो जाने पर, और मर जाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग तैयार है। इसलिए आओ युद्ध करो। मुस्कुराते हुए अलर्क ने कहा, हे वीर, आपका कहना तो ठीक है, मेरे मन में पहले यही विचार उठते थे, परंतु अब मेरे मन की धारणा को आपके ये शब्द बदल नहीं सकते हैं। इसका कारण सुनो। तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने महायोगेश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली थी। उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीतकर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर अपने मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना, ये सबसे बड़ा विजय है। आपको मैं विजय लेकर क्या करूंगा? मैं तो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। युद्ध तो सबसे बड़ा मनुष्य के पास अपने अंदर हो ही रहा है। ये इंद्रियां शत्रु, मन शत्रु, बुद्धि शत्रु, इनके साथ युद्ध करने में और इन पर विजय प्राप्त करने में यही सबसे बड़ा उसका काम है। मैं आपका शत्रु नहीं, आप मेरे शत्रु नहीं, इसलिए आप बड़े प्रेम से इस राज्य को स्वीकार कीजिए। ये सुबाहु, ये मेरे बड़े भाई होने के कारण से मेरा बड़ा उपकार किए हैं। पहले तो मैं समझता था मेरे भाई मेरे पास आए राज्य लें, ऐसा यदि कर लेते तो आज मुझे इतना ज्ञान नहीं होता। मैंने सब बातों का अच्छी तरह से विचार कर लिया है। हे राजन, अब मेरे लिए कोई शत्रु नाम की चीज रही नहीं है। तुम मुझे तो छोड़ दो, और अब दूसरे कोई शत्रु हो तो उनको ढूंढो। अलर्क ने कहा। अलर्क के यूं कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे उठकर खड़े होकर कहने लगे, धन्य है, धन्य है। हम तीन भाई के बाद ये चौथा भाई, इसको बार बार विचार करके सोचता था कि ये कैसे इसमें फंस रहा है, आज इसकी बातें सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अपने भाई को गले लगाया और काशीराज से बोले, हे काशीराज, मैंने आपको जिस काम के लिए युद्ध में उत्साहित किया था, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ। हे काशीराज जी, आप सुखी रहो। हैं? काशीराज बोलते हैं, सुबाहु, तुम किसके लिए आए थे? तुम्हारा कौन सा काम सिद्ध हो गया, बताओ, मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास तो आकर के ये कहा था तुमने मेरे पास आकर तो ये कहा था कि मेरे बाप दादों का बहुत बड़ा राज्य है, इस अलर्क ने हड़प लिया है, वह उसे जीतकर मुझे दे दो। तो फिर जब मैं इस पर आक्रमण करने आया हूँ तो तुम भाई भाई तो आपस में मिल गए, और मुझे इस प्रकार से तुम अकेले छोड़ दिए। ये क्या तुम्हारे कुल परंपरा की शोभा देता है? ना, मैं ऐसे राज्य को नहीं लेता। हे सुबाहु, ये राज्य तुम रखो और तुम इसके मालिक बनो, तुम ही इसका उपभोग करो। सुबाहु ने कहा, काशीराज, आप नाराज न हो, मैंने जिस उद्देश्य से प्रयत्न किया था यह महान उद्योग था। मेरा ये छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे और भी तो दो बड़े भाई हैं, परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को तथा मुझे भी हमारी माता ने बचपन में जब दूध पिलाया था उसी समय कान में तत्व ज्ञान भी भर दिया था। हमारे मुंह में माता का दूध और कान में माता का दिया हुआ ज्ञान, वही आज हमें तरह तरह के ऐसे शुभ संकल्प पैदा करता है। परंतु अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया। राजन, जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर श्रेष्ठ पुरुष के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार इस मेरे छोटे भाई अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को बड़ा कष्ट हो रहा था, क्योंकि यह सब इस शरीर के संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। ये परिवार के जितने भी संबंध हैं, ये सब संबंध तो परस्पर में प्रेम करने के लिए हैं, एक दूसरे के कल्याण करने के लिए हैं। ये इस प्रकार से मोह में फंसने के लिए नहीं होते। इस प्रकार मेरा जो कार्य था वो कार्य पूरा हो गया, अब आपका कल्याण हो। मदालसा के गर्भ में हम लोगों ने जन्म लिया है, उनके स्तनों का दूध पिया है, उनका ज्ञान प्राप्त किया है और हम तीन तो एक तरफ हो गए। अलर्क है ये मार्ग से भटकने जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सब काम पूरा हो गया, ये सबकी सिद्धि हो गई। जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन बंधु और सुहृद की उपेक्षा करते हैं, वे सब मेरे विचार से विकलेंद्रिय हैं। उनकी इंद्रियां, हाथ पैर आदि कोई काम के नहीं है। सांसारिक संबंध धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी सिद्धि के लिए होते हैं। तुम्हारे संग से मैंने बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। हे साधु श्रेष्ठ, मैं तो काशीराज आपसे भी कहता हूं कि आप भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने अलर्क का बहुत बड़ा उपकार किया, अब मेरा भी भला करो। अब मैं क्या करूं, तुम तो पहले से ही मुक्त थे, छोटे भाई का तुमने कल्याण कर दिया, अब मैं कहां जाऊं। तुम जैसे संतों का सत्पुरुषों का संग करने के बाद क्या मैं वापस काशी जाऊंगा, क्या मैं भोगों में पड़ा ही रहूंगा। अपनी आंखों के सामने इतने बड़े ज्ञानियों को देखकर क्या मैं ऐसे ही निष्फल रहूंगा। नहीं, तुम्हारे संसर्ग से मेरी भी उन्नति होनी चाहिए। सुबाहु बोले, हे काशीराज, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ हैं, इनमें से धर्म अर्थ काम तो तुमको प्राप्त हुए हैं, मोक्ष